अरुणिमा कमरे में कुर्सी से बंधी हुई थी और निकलने की कोशिश कर रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो एक ऐसे जाल में फंसी है जहां से दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो खुद को फिर एक बार कैद में पा रही थी, लेकिन इस बार उसे कैद करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति था। आस्तिक ने अरुणिमा को कुर्सी से बांध दिया था और वो उसके सामने बैठा था। आस्तिक गुस्से में अरुणिमा को घूर रहा था। अरुणिमा का पूरा चेहरा पसीने से भीग चुका था। उसे फिर से वो पल याद आने लगे जब उसे किडनैप कर इसी तरह कुर्सी से बांधा गया था। फर्क सिर्फ इतना था कि तब वो एक अंधेरे और बदबूदार कमरे में थी और अब वो आस्तिक के फार्म हाउस पर थी, उसके सामने बंदी बनकर। सूर्य को तो वो जानती भी नहीं थी, लेकिन आस्तिक को वो बहुत अच्छे से जानती थी। सूर्य मल्होत्रा खतरनाक हो सकता था, लेकिन आस्तिक सिर्फ खतरनाक ही नहीं, जानलेवा भी था। उसकी भयंकर निगाहें अरुणिमा को अंदर तक कांपने पर मजबूर कर रही थी। वो डरते हुए आस्तिक से बोली, आस्तिक क्या कर रहे हो? देखो, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुँचाओगे, और मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो तुम मुझे ऐसी सजा दे रहे हो? मैंने तो बस एक सवाल किया था, क्या हम दोनों एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? क्या तुम्हें ये सवाल इतना चुभ गया है कि तुम मुझे इसकी सजा दे रहे हो? और अगर ऐसा ही था तो फिर वो सब क्या था जो मैंने देखा था? क्या सच में तुम्हें मेरी परवाह नहीं है? अगर नहीं है तो फिर क्यों तुम मुझे बचाने के लिए वहां तक गए थे, और क्यों तुम जलते हुए घर में कूद पड़े थे? तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? अरुणिमा की बात सुनकर आस्तिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी कहीं से भी सामान्य नहीं लग रही थी। उसमें एक तंज और पागलपन साफ छलक रहा था। अरुणिमा उसे हैरानी से देख रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि आस्तिक इतना क्यों हंस रहा है। अचानक आस्तिक ने खतरनाक अंदाज में अरुणिमा की तरफ देखा और अपने टेढ़े होठों के साथ कहा, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान खतरे में डालूंगा? अरुणिमा घबरा गई, लेकिन फिर भी हिम्मत करके बोली, अगर ऐसा नहीं था तो फिर बताओ कि तुमने मुझे क्यों बचाया? आस्तिक ने अरुणिमा की बात पर फिर से अपने हाथों को थपथपाया और एक मजाकिया अंदाज में हंसने लगा। उसने कहा, जान, मुझे लगा था कि तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो। तुम्हें तो पता होना चाहिए कि मैं जो भी करता हूँ उसमें कोई ना कोई फायदा जरूर होता है। बिना फायदे के मैं कोई काम नहीं करता, और तुम्हें बचाने में भी मेरा अपना फायदा था। अगर फायदा नहीं होता तो मैं तुम्हारे लिए खुद को खतरे में क्यों डालता? शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं बहुत जल्दी माफिया का लीडर बनने वाला हूँ, और ऐसे में तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसी लड़की के लिए खुद को नुकसान पहुँचाऊंगा? अरुणिमा के दिल में एक गहरी टीस उठी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो हैरानी और दर्द से आस्तिक को देख रही थी, जो उसके जज्बातों का मजाक उड़ाते हुए लगातार हंसे जा रहा था। आस्तिक इतना हंस रहा था कि उसकी आंखों से भी पानी निकल आया था। खुद को जबरदस्ती रोकते हुए उसने कहा, तुम जानना चाहती हो ना कि मैंने तुम्हें क्यों बचाया? तो सुनो, मेरे बाप ने मुझे एक ऑर्डर दिया है, जब तक मैं अपना बच्चा नहीं पैदा करता तब तक वो मुझे माफिया का अगला किंग नहीं बनाएगा, मुझे वो ताकत नहीं देगा जिसके लिए मैंने सालों मेहनत की है, अपनों से दूरी बनाई है और खुद को सबसे बहरम बना लिया है। लेकिन उसे पाने के लिए मुझे एक शर्त पूरी करनी है, मुझे एक बच्चा चाहिए, और वो बच्चा मुझे तुमसे चाहिए, क्योंकि तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी बॉडी को लेकर ऑब्सेस्ड हूँ। मैं तुम्हारी खूबसूरत बदन को बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकता, इसीलिए मुझे तुम्हारी इस बॉडी की ज़रूरत है, ताकि मेरी ज़रूरतें भी पूरी हों और बच्चा भी मिल जाए। मुझे सरोगेसी के लिए तुम्हारी ज़रूरत है, इसीलिए मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता, और यही वजह थी कि मैं तुम्हें बचाने गया, क्योंकि अगर तुम मर जाती तो तुम्हारा और मेरा परिवार मुझसे सवाल करता। तुम्हारी मौत को तो मैं फिर भी मैनेज कर लेता, लेकिन उसके बाद मेरी सत्ता हाथ से चली जाती। मैं एक बिजनेसमैन हूँ अरुणिमा, घाटे का सौदा नहीं करता, और किसी भी डील को तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो लास्ट तक क्रैक ना हो जाए। आस्तिक अपनी बात बेरहमी से कह रहा था, और अरुणिमा बस अपनी आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आस्तिक ये सब क्यों कर रही है। अरुणिमा तो आस्तिक के साथ एक मौका तलाश रही थी, उसके साथ चाहे जैसी भी हो जिंदगी को आगे जीने का सोच रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आस्तिक वही इंसान है जो उसे बचाने के लिए आग में कूद गया था, जिसने उसकी परवाह दिखाई थी। अभी कुछ देर पहले तक तो इस कमरे में दोनों आराम से बात कर रहे थे। अरुणिमा को पहली बार आस्तिक के डर के बारे में पता चला था। उसे बारिश से डर लगता है, बिजली से डर लगता है, लेकिन ये इंसान बाकी सबसे अलग है, जो कुछ देर पहले तक अरुणिमा के साथ अच्छे से पेश आ रहा था। अरुणिमा के चेहरे पर बदलते भाव देखकर आस्तिक हंसते हुए बोला, मुझे लगा था कि तुम बेवकूफ़ हो, लेकिन इतनी बड़ी बेवकूफ़ हो सकती हो ये नहीं सोचा था। क्या सोच रही थी तुम? यही ना कि मेरे साथ एक अच्छी जिंदगी बिताओगी, मेरे साथ नॉर्मल जिंदगी जियोगी, मेरे साथ कोई अच्छा भविष्य बना पाओगी, यही सोच रही थी ना? लेकिन तुम अपनी इस बेवकूफ़ी भरी सोच में मुझे शामिल नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगा मुझे तुम्हारी चालों के बारे में पता नहीं चलेगा? जिस इंसान ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, जिसने तुम्हारी जिंदगी को नरक बना दिया, तुम उसी के साथ हंसी खुशी जीवन बिताने के लिए तैयार हो गई? और क्या कहा तुमने कि तुम हमारी शादी को एक मौका देना चाहती हो? कौन सी शादी? जब मैं इस रिश्ते को ही नहीं मानता तो मौका देने का तो सवाल ही नहीं उठता। अरुणिमा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका मन कर रहा था कि वो आस्तिक को एक जोरदार थप्पड़ मारे, लेकिन वो इस वक्त अपने हालातों में मजबूर थी। फिर भी उसे आस्तिक पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आस्तिक हंसते हुए अपनी जगह से खड़ा हुआ और धीरे धीरे अरुणिमा के पास आया। वो उसके सामने पंजों के बल बैठ गया। अरुणिमा उसे गुस्से भरी नजरों से देख रही थी। तब आस्तिक बोला, तुम सिर्फ मेरी मंजिल तक पहुंचने का एक रास्ता हो और मैं रास्ते में कभी अपना बसेरा नहीं बनाता। आस्तिक के इन शब्दों ने अरुणिमा को अंदर तक तोड़ दिया था। अब उसे आस्तिक से बेइंतहा नफरत हो गई थी। ये इंसान नहीं, जानवर है, और इस जानवर के साथ वो अपनी जिंदगी का एक दिन भी नहीं बिताना चाहती। उसे अपनी ही सोच पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने आस्तिक को एक मौका देने की सोची थी। आस्तिक उस लायक ही नहीं है, ना उसके साथ किसी रिश्ते के और ना ही अरुणिमा के बच्चे के। अरुणिमा को आज खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने सोचा कि आस्तिक जैसे जानवर को वो एक और मौका देगी और शायद वो बदल जाएगा, लेकिन आस्तिक कभी नहीं बदल सकता। अरुणिमा की अंतरात्मा ने उसे सच्चाई से रूबरू करवाया कि आस्तिक जैसे इंसान को एक मौका देना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। आस्तिक के लिए हर चीज एक स्वार्थ है, एक मतलब है, और जब उसका मतलब पूरा हो जाए तो वो इंसान उसके लिए बेमतलब हो जाता है। आस्तिक उठकर खड़ा हुआ और अरुणिमा को रोता देखकर मुस्कुराने लगा। वो अरुणिमा की कुर्सी के पीछे गया और उसकी रस्सी खोल दी, फिर उसे देखकर बोला, उम्मीद है तुम्हें अपना सबक मिल गया होगा और आज के बाद अपने इस बेवकूफी भरे दिमाग में कोई ऐसी बात मत लाना जो मुझे दोबारा गुस्सा दिला दे, क्योंकि इस बार तो सिर्फ रस्सियों से बांधा था, अगली बार जंजीरों से बांधूंगा।